महाबंध पुस्तक चौथी लेक्चर नंबर 11। ओम नमः सिद्धेश्वर, ओम नमः सिद्धेश्वर, ओम नमः सिद्धेश्वर,
ओम शुद्धात्मने नमः नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो अज्ञायाणं नमो लोए संवसाम भूतबलि प्रणीतं तं बन्धतत्वप्रकाशकं महाधवलविख्यातं महाबन्धं नमाम्यहम्।
आचार्य श्री भूतबलि भट्टारक प्रणीत यह महाबंध नाम का सिद्धांत शास्त्र है, जो षटखंडागम का 6 नंबर का खंड है। इसमें तृतीय अनुभाग बंध अधिकार को देखते हुए अभी हम पृष्ठ संख्या 42 पर आ गए। चौथी पुस्तक पृष्ठ संख्या 42, 42। देखो, विषय हमारा चल रहा है अनुभाग बंध का, और उसमें उत्कृष्ट अनुभाग बंध और जघन्य अनुभाग बंध, वो हमने किसको होता है वो स्वामित्व में देखा था। फिर लगातार उत्कृष्ट का काल और लगातार जघन्य यानी अनुत्कृष्ट का काल, वो देखने के बाद अभी जघन्य की बात चल रही थी। आपने तो कुछ सुने नहीं होंगे ना यहाँ पर। तो पहले उत्कृष्ट अनुभाग बंध कहाँ होता है उसकी बात करेंगे। तो चार घाती कर्मों का उत्कृष्ट संगी पंचेंद्रिय मिथ्या दृष्टि, उसकी वो पूरी संकलेश वाला, और वेदनीय नाम गोत्र का उत्कृष्ट कहाँ होगा? हाँ, शपक सूक्ष्म सांप्रदाय के अंतिम समय में, अंतिम एक समय में उसका उत्कृष्ट होगा। आयु का उत्कृष्ट कहाँ होता है? मध्यम परिणाम वाला जो है। हाँ, तो इस तरह से हमने बात देखी थी उसकी। जघन्य की बात हमने देखी, अभी जघन्य में उल्टा सोचना है। चार घाती कर्मों का क्षपक के जघन्य होगा, और अनादि से वो अजगर नहीं था। और वेदिनी नाम गोत्र का कहाँ होता है? गोत्र को छोड़ो, वेदिनी नाम को मध्यम परिणाम में जघन्य होता है, वो मिथ्या दृष्टि हो या समय दृष्टि। गोत्र का जघन्य सातवें नरक का नारकी सम्यक्त के सन्मुख है, तब उसका जघन्य होता है। तो ये बातें हमने देखी थी, अभी हम मार्गणाओं में लगा रहे। तो मार्गणाओं में हम कृष्ण लेशा में कृष्ण नील कापोत की बात हमने देखी थी, अब पीत और पद्मलेशा वालों में हम सुनने जा रहे हैं। देखो नीचे से वो 114 नंबर का पैराग्राफ है ना, पीत और पद्मलेशा वाले जीव में चार घाती कर्मों के जघन्य अनुभाग बंध का जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। क्योंकि पीत पद्मलेशा वाले में कौन लेना है? तो अप्रमत्त गुणस्थान वाला जो है, सर्व विशुद्ध जो लेना। चार घाती कर्मों का जघन्य अनुभाग बंध, मेरे ख्याल से वो क्षपणा दर्शनमुखी क्षपणा करने वाले के होगा। हाँ, श्रेणी के सन्मुख में देखो सातवां गुणस्थान वाला लेना है, परंतु वहाँ दर्शनमुखी क्षपणा वाला लेना पड़ेगा। एक मिनट, अपन स्वामित्व में देख लेते। हाँ, देव को नहीं लेंगे, पीत पद्मलेशा सातवें गुणस्थान में है ना, सातवें गुणस्थान में उसकी विशुद्धि ज्यादा होगी। देखो सर्व विशुद्ध अप्रमत्त संयत लिया, सर्व विशुद्ध अप्रमत्त संयत, परंतु श्रेणी के सन्मुख में वो शुक्ल लेशा हो जाती है क्या, ये मुझे डाउट था। पर दर्शनमुखी सपना में अंतरकरण परिणाम के अनिवृत्तिकरण का अंतिम समय हो सकता है, तो वहाँ उसकी विशुद्धि शायद ज्यादा होगी, पर एक समय है लेना है ना। हाँ, अभी मैंने देखा ना 24 पर, उसमें सर्व विशुद्ध इतना ही लिखा है।
अप्रमत्त संयत
तो बता दिया मैं, अब देखो अजघन्य अनुभाग बंध का, जघन्य काल अंतर्मूल, क्योंकि लेशा का काल अंतर्मूल होता है, इसलिए देवों में वो तो कायम होगी उनकी लेशा, मनुष्य और तिर्यंचों में अंतर्मूल तक होती है। जैसे क्रोधादि में हमने एक समय का देखते था, वैसे लेशा में नहीं होता है, लेशा एक समय में नहीं पलटती।
तो फिर देव लोग को वो अजघन एक समय के लिए कर सकते हैं जहाँ लेशा नहीं पलटता?
नहीं नहीं होगा ना, क्योंकि उनका देवों में वो देव मार्गणा में देव गति में वो कह ही सकते हैं।
लेशा वाला कोई है, देव है, उनकी तो लेशा वही कायम रहती है, तो हाँ। वो अजघन एक समय
और वो देव के लिए कहलाएगा उनका अजघन्य, क्योंकि उनका जघन्य कब होता है? चौथे गुणस्थान वाला सर्व विशुद्ध, और उसका कितने समय तक होगा जघन्य, कितने समय तक होगा? एक या दो समय, उनका जघन्य एक या दो समय तक ही होगा। देव के लिए निकालो देव की मार्गणा, देव गति मार्गणा में देव को निकालो। उसकी बात नहीं है, देखो नहीं नहीं काल निकालो ना,
37 पर देख लिया ना,
हाँ 37 पर नारकियों के समान यानी क्या है? एक या दो समय, क्यों? स्वामी कौन था? सर्व विशुद्ध चौथे गुणस्थान वाला, तो चौथे गुणस्थान में जो जघन्य एक समय तक कर सकता है, तो दो जघन्य के बीच एक समय के लिए अजघन्य कर सकता है वहां पर। अब यहाँ कहाँ लेना है? सर्व विशुद्ध एक ही समय का जघन्य करता है, एक ही समय का जघन्य करता है, तो उसका अजघन्य एक समय घटित नहीं होगा।
दोनों का अलग अलग सोते हैं, अजघन्य के लिए अलग सोच रहे थे स्वामी और जघन्य के लिए अलग।
तो यहाँ कैसे जो लेशा में जो अप्रमत्त सर्वोत्कृष्ट वो विशुद्धि वाला नहीं है, वो बाकी सारे कैसे अजघन्य ही है? अजघन्य है तो लेशा का काल लेना पड़ेगा, लेशा का मिनिमम और लेशा का मैक्सिमम काल। तो देखो तो अजघन्य अनुभाग बंध का अपने पेज पर आना 42 पर, पीठ लेशा वाले की सेकंड लाइन, अजघन्य अनुभाग बंध का जघन्य काल अंतर्मूर्त, उत्कृष्ट काल क्रम से साधिक 2 सागर यानी पीठ के लिए और साधिक 18 सागर पद्म के लिए, वेदनीय नाम और गोत्र कर्म के, जघन्य अनुभाग बंध का भंग सौधर्म कल्प के समान है, यानी वो तो 1-4 समय तक होता है जघन्य, क्योंकि मध्यम परिणाम में परिवर्तमान मध्यम परिणाम में जघन्य होता है। अजघन्य अनुभाग बंध का जघन्य काल एक समय है, क्योंकि जहां जघन्य 1-4 समय तो बीच में अजघन्य भी एक समय के लिए हो सकता है, और उत्कृष्ट काल ज्ञानावरण के समान है, यानी उसने जघन्य किया ही नहीं तो साधिक 2 सागर पीत के लिए और साधिक 18 सागर पद्म के लिए। अब शुक्र लेशा वाले जीवों में 4 घाती कर्मों के जघन्य अनुभाग बंध का जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। लक्ष्मी कहाँ होगा ये? शपक के अंतिम समय, अंतिम समय। और अजघन्य अनुभाग बंध का काल अनुत्कृष्ट के समान है, क्योंकि शुक्ल लेशा जो है जो जघन्य नहीं कर रहा है वो सारे अजघन्य ही कर रहे हैं, तो अजघन्य का जघन्य काल अंतर्मूर्त होता होगा, यानी उन्होंने लिखा अजघन्य अनुभाग बंध का काल अनुत्कृष्ट के समान है, पर अनुत्कृष्ट का एक समय घटित हुआ था, क्योंकि शुक्ल लेशा में उत्कृष्ट कौन करेगा? तो संक्लेश परिणाम वाला मिथ्या दृष्टि करेगा।
नहीं, आप 4 घाती का है ना?
4 घाती का उन्होंने क्या कहा? अजघन्य का अनुत्कृष्ट के समान है, पर अजघन्य का जघन्य काल कितना होगा? अंतर्मूर्त होगा, क्योंकि लेशा का काल लेना है। और अजघन्य का उत्कृष्ट काल कितना होगा? साधिक 33 सागर, क्योंकि दोनों ओर उसका अंतर्मूर्त बढ़ेगा ना, साधिक 33 सागर। अब मुझे ये कहना है पूरा का पूरा अनुत्कृष्ट के समान नहीं हुआ था, अनुत्कृष्ट का जघन्य काल कितना देखा था हमने, याद है? शुक्ल लेशा में ये 4 घाती है, पहले ये नक्की करो कि उत्कृष्ट कौन करेगा,
उत्कृष्ट कौन करेगा ना?
संकलेश वाला मिथ्या दृष्टि करे, देव करेगा। अब वो उत्कृष्ट मिथ्या दृष्टि करता है, एक या दो समय के लिए करता है, तो बीच में अनुत्कृष्ट एक समय का हो सकता है। ऐसे यहाँ जघन्य कब हुआ था? क्षपक के अंतिम समय, उसके बाद फिर दो जघन्य के बीच में वो तो पॉसिबल ही नहीं। इसलिए अनुत्कृष्ट का जघन्य एक समय था, पर अजघन्य का जघन्य अंतर्मूर्त होगा ही होगा, क्योंकि शुक्ल लेशा में रहने का मिनिमम काल अंतर्मूर्त मनुष्य तीन अंशों में। अब वेदनीय नाम और गोत्र कर्म के, ये शुक्ल लेशा में बात चल रही है। जघन्य अनुभाग बंध का जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल चार समय है,
तो
मध्यम परिणाम में होता है। कोई भी करेगा ना, समय दृष्टि मिथ्या दृष्टि कोई भी करेगा। और जघन्य अनुभाग बंध का जघन्य काल एक समय है, ये दो जघन्य के बीच में हो सकता है। उत्कृष्ट काल साधिक 33 सागर है, यानी उस लेशा में रहने का उत्कृष्ट काल, दोनों जाने के पहले और आने के बाद अंतर्मूर्त अंतर्मूर्त बढ़ेगा। हाँ देखो, अभी आगे देखते हैं विशेषार्थ। इन लेशाओं में अपने अपने स्वामित्व का विचार कर काल ले आना चाहिए, कोई विशेषता न होने से यहाँ उसका स्पष्टीकरण नहीं किया। यानी स्वामित्व के प्रकरण में हमने उस लेशा में स्वामित्व देखा था, किसको होता है क्या होता है। शायिक समय दृष्टि जीवों में समयत्व मार्गणा की अपेक्षा क्षायिक समय दृष्टि लिया, क्योंकि सामान्य से समय दृष्टि की बात तो अभी निबोधि ज्ञानी के समान बता चुके थे। चार घाती कर्म और गोत्र कर्म के जघन्य अनुभाग बंध का जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अब क्षायिक समय दृष्टि में गोत्र कर्म का जघन्य कब होगा? क्षायिक समय दृष्टि चौथे से ऊपर तक सब जगह, चौथे में सर्व संकलेश वाला हुआ। श्रेणी की बात नहीं,
नहीं,
नहीं।, नहीं देखो गोत्र की बात है। गोत्र तो उच्च गोत्र ही बन रहा है, श्रेणी में तो उत्कृष्ट बंधेगा। हाँ तो संकलेश में, अब अन्य समय दृष्टियों में मिथ्या तो के सन्मुख वाले को लेते, यहाँ तो वो नहीं ले सकते।
ऐसा नहीं ले सकते कि चौथे के सन्मुख के ऊपर से,
ना ना चौथे वाले को ही मिनिमम विशुद्धि होगी ना, सर्व संकलेश चौथे वाले को होगा। हाँ संकलेश कर्म, परंतु गोत्र कर्म में ये वो मिथ्यात्व के सन्मुख नहीं होता है, इसलिए दो समय वाला होगा वो। देखो जो मिथ्यात्व के अभिमुख होता है उसका वो बंध जो है गोत्र कर्म का उत्कृष्ट बंध, वो एक समय के लिए होगा। जो सामान्य समय दृष्टि है, सामान्य समय दृष्टि के वो गोत्र कर्म ही उच्च गोत्र ही बांध रहा है, तो उसका उच्च गोत्र का जघन्य कब होगा? तो संकलेश में। तो सामान्य समय दृष्टि तो उसको मिथ्यात्व के सन्मुख वाले को लेना है, और मिथ्यात्व के सन्मुख अवस्था में एक समय के लिए जघन्य होगा उसको। परंतु यहाँ कौन सा लेना है? रेगुलर चौथे वाला, संकलेश वाला, सर्व संकलेश वाला, तो उसका एक समय नहीं होगा, उसके दो समय तक हो सकता, एक या दो समय। इसलिए यहाँ क्या कहेंगे, चार घाती कर्म का तो क्षपक अंतिम समय में एक समय तो होता ही होता है, पर गोत्र कर्म का जो जघन्य अनुभाग का जघन्य काल एक समय बराबर है। परंतु देखो इतनी विशेषता है कि गोत्र कर्म के जघन्य अनुभाग बंध का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल दो समय है। ये समझ में आई बात? सामान्य से समय दृष्टि होता, वैदिक समय दृष्टि होता, उपशम समय दृष्टि होता तो हम एक समय कहेंगे, क्योंकि वो मिथ्यात्व के सन्मुख था, मिथ्यात्व में तब उसका एक ही समय के लिए सर्वोत्कृष्ट वो संकलेश होगा। परंतु गोत्र कर्म ये तो मिथ्यात्व में जाने से रहा, तो रेगुलर उसका जो संकलेश होता है अधिक से अधिक, परंतु लगातार दो समय तक हो सकता है, ये कहना। अजघन्य अनुभाग बंध का जघन्य काल अंतर्मूर्त है, और उत्कृष्ट काल साधिक 33 सागर है। देखो अजगण्य का लेना है, जो जगण्य नहीं वो सारा अजगण्य है। अब पहले चार घाती कर्मों पर घटित करते हैं। लक्ष्य में आपको सोचना है चार घाती कर्मों का जगण्य है कब? शपक के अंतिम समय में, अदरवाइज अजगण्य है। और उसका अंतर्मुख कैसे होगा? हाँ, उतरेगा तो शादी हो गया, फिर दोबारा श्रेणी चढ़ी। जब तक वो अंतिम समय में जगण्य नहीं करता, यानी उपशम श्रेणी उतरा क्षपक श्रेणी चढ़ी, ऐसा ले ले, वो अंतर्मूर्त होगा। हाँ, क्योंकि क्षायिक सम्यक तो का तो अंतर्मूर्त काल होता नहीं है। सामान्य समय दृष्टि में अंतर्मूर्त उसका सम्यक तो का काल भी ले सकते हैं, दो श्रेणी के बीच भी ले सकते हैं सामान्य से समय दृष्टि में। अभिनिबोधिक ज्ञानी में कैसे लिया था हमने, उसमें हो सकता है, परंतु यहाँ क्षायिक में तो अंतर्मूर्त वाला क्षायिक समय दृष्टि तो रहेगा नहीं कोई। समझ में आती ना? आप ऐसा कह सकते कि क्षायिक हुआ और श्रेणी चढ़ा, फिर भी वो अंतर्मूर्त बड़ा हो जाएगा। यहाँ दो श्रेणी के बीच में उसको लेना है। तो जगन्य काल अंतर्मूर्त लिया ना, दो श्रेणी के बीच में। और उत्कृष्ट काल साधिक 33 सागर है, जो क्षायिक समित्व का काल है। यानी क्षायिक समय दृष्टि कोई जीव अधिक से अधिक कितने काल तक रहता है, क्योंकि क्षायिक किया 33 सागर वाले देव में गया, आके फिर उसने पूर्व कोटि का भव करके मोक्ष किया, तो दोनों ओर कुछ कम पूर्व कोटि लगा लेना। अब वेदिनी नाम और गोत्र, अभी सॉरी गोत्र की भी बात देख लो। गोत्र का जगन्य एक या दो समय के लिए लिया, तो गोत्र का अजगन्य कितने समय तक होगा? एक समय के लेना पड़ेगा। यहाँ सबको एक समय, इतनी विशेष से गोत्र कर्म के जगन्य अनुभाग बंध का जगन्य काल एक समय, उत्कृष्ट काल दो समय है। एक हाँ तथा इसे इन परिणामों को पुनः प्राप्त करने में अंतर्मूर्त काल लगता है। जरा साइक समय दृष्टि में उत्तर प्रकृतियों में देख लेते हैं, क्योंकि चौथे गुण स्थान में उसका जघन्य होता है, तो बीच दो दो जघन्य के बीच में अजघन्य तो होना चाहिए था, कि संक्लेश परिणाम में नहीं हो सकता। जरा देख लेते हैं, उत्तर प्रकृति में हम काल देखेंगे। हाँ देखते हैं ना, टू एट्टी फाइव के आगे कहीं 300 and something
साइक में लिखना
है, साइक में लेना 309। अभी हमको गोत्र की देखनी है, उच्च गोत्र। त्रिवन जीरो की बात देखें, जगन्य का काल एक समय, उत्कृष्ट काल दो समय, अजगन्य का जगन्य काल एक समय, उत्कृष्ट काल 33 सागर है, दो जगन्य के बीच में, ऐसा ही होना चाहिए था। हाँ। क्योंकि चौथे गुण स्थान में है, दो जगन्य के बीच हो सकता है। ये चार घाती कर्म के लिए अजगन्य का जगन्य अंतर्मूर्त बराबर है। अभी ऐसा हम यहाँ लिखेंगे, पेज नंबर 43 निकालिए। यहाँ लिखना है 43 पेज पर पहली लाइन, जहां से शुरू है ना, आधे के बाद अजगन्य अनुभाग बंध का जगन्य काल अंतर्मूल, उसके पहले लिखो चार घाती कर्मों का।
चार
वहाँ लिखना, क्योंकि वो अंतर्मूर्त वो गोत्र कर्म के लिए लागू नहीं होता है, वो अजगन्य अनुभाग बंद है, वो चार घाती कर्मों का, हाँ चार घाती कर्मों का अनुभाग, अजगन्य अनुभाग बंद तो लिखा है आगे, केवल चार घाती कर्मों का लिखो। देखो अभी वाक्य कैसा हुआ, पहले चार घाती और गोत्र का जघन्य का एक समय बताया, फिर विशेषता गोत्र कर्म में जघन्य अनुभाग का जघन्य काल एक समय, उत्कृष्ट काल दो समय बताया, अब चार घाती कर्मों का अजघन्य अनुभाग बंध का जघन्य काल अंतर्मूल और उत्कृष्ट काल साधिक तैतीस सागर, बराबर है ना। अब कहते हैं यहाँ विशेषता गोत्र की डालना, गोत्र के अनुभाग अजघन्य अनुभाग बंध का जघन्य काल एक समय है, या ऐसा लिखना पड़ेगा, जरा मैं सोच लेने दो, चार घाती कर्मों का और गोत्र कर्म का अजगन्य अनुभाग बंध का जगन्य काल क्रम से अंतर्मूर्त और एक समय है, ऐसा लिखेंगे तो सभी वाक्य डालने की जरूरत नहीं है। देखो देखो अभी मैंने हमने चार घाती कर्मों का लिखा ना, हाँ तो वहाँ लिखना चार घाती कर्मों का और गोत्र कर्म का और गोत्र कर्म का उसके आगे और गोत्र कर्म का, इतना लिखा ना। अब वहाँ का वाक्य पढ़ रही हूँ मैं, अभी लिखना नहीं आपको, गोत्र कर्म के बाद सुनना है, अजघन्य अनुभाग बंध का जघन्य काल, अब यहाँ डालो क्रम से, जघन्य काल के बाद लिखो क्रम से, नीचे लिखा है अंतर्मूर्त और एक समय है, अंतर्मूर्त के बाद और एक समय लिखो, उसके लिए रेफरेंस देना है 310 ऊपर
भी करना पड़ेगा ना,
जहाँ क्रम से बात आती है ना वैसा शब्द डालना पड़ेगा। क्रम से शब्द आया, पीत और पद्म के लिए क्रम से शब्द डाला था ना, पहले मुझे रेफरेंस लिखने दो। हाँ पीत पद्म में क्रम से शब्द डाला था उन्होंने 114 पॉइंट, एक मिनट क्रम से
दो सागर,
हाँ 310 पेज पर आपको देखना है ना, तो पहले पैराग्राफ के नीचे से एक दो तीन चार पांचवी लाइन से पंचेंद्रीय जाति वगैरह सभी प्रकृतियां शुरू हुई है, और उसमें सबसे अंत में उच्च गोत्र लिखा है ना, तो उच्च गोत्र केवल हम पकड़ते हैं, तो जघन्य अनुभाग बंध का जघन्य काल एक समय, उत्कृष्ट काल दो समय, वो तो हमने डिराइव किया, अजघन्य अनुभाग बंध का जघन्य काल एक समय है, और वहाँ हमने लिखा भी था दो जगहने के बीच में, और उत्कृष्ट काल साधिक 33 सागर है। वो रेफरेंस फॉर पेज अपना 43 था ना। अब यहाँ आप अभी वो क्रम से बात देख रही थी ना, और जह जह अंत उपको बे 1800 सागर, उन्होंने क्रम से शब्द हिंदी में डाला है, वहां कुछ नहीं लिखा है, तो यहाँ लिखना है अंतोमोत्तर और एक समय। देखो ऊपर हमको देखना है 42 हो गया ना, वरी गोद जह एग उपक बे समयम अ जह जह अंतो अंतो और एग समय लिखना।
नहीं पहले चार गाली लिखना पड़ेगा ना, चार गाली और
सबके है ना, पांचों की बात चल रही
है।
गादी चार गोद
अज
के पहले, जैसे हमने हिंदी में डाला है पहली लाइन अज के पहले, हाँ अज जह के ने अज के भी पहले डालना है। घादी चार गोद गोद लिखा है ना यहाँ पर, घाई गे गोद लिखा है ना, ओ ज जह अंतो एग समय ऐसा डाले, अंतो के बाद एग अ जह जह अंतो लिखा है, अंतो के बाद एग लिखना,
यानी वो
अज जह अंतो लिखा है गोद, हाँ इतना ही लिख रहा है, और अंतो के बाद एग लिखना है एग, यानी वो क्रम से हमने उसका भाषांतर कर दिया। उपक तो बराबर है 33 सागरों सादी रे, यानी अब वेदनी की बात पढ़ेंगे, वेदनी और नाम कर्म के गोत्र की बात तो बता चुके हैं। तो वेदनीय नाम है वो तो मध्यम परिणाम में जघन्य होता है, जघन्य अनुभाग बंध का काल ओघ के समान है, यानी एक से चार समय है, और अजघन्य अनुभाग बंध का जघन्य काल एक समय है, क्योंकि जघन्य के बीच में हो सकता है। उत्कृष्ट काल साधिक 33 सागर जो ज्ञान वर्ण आदि के बारे में देखा वैसा ही इसमें है। विशेषार्थ यहाँ गोत्र कर्म के जघन्य अनुभाग बंध का जघन्य काल एक समय उत्कृष्ट काल दो समय कहाँ है, सो इसका कारण यह है, इसका जघन्य अनुभाग चारों गति के समय दृष्टि जीव के उत्कृष्ट संक्लेश परिणामों से बनता है। एक्चुअली समय दृष्टि लिखना नहीं है यहाँ, तो अविरत समय दृष्टि लिखना पड़ेगा। क्योंकि क्षायिक अविरत पाहिजे ना, अविरत समय दृष्टि चाहिए। शायिक समय दृष्टि चौथे गुणस्थान वाले को संकलेश होगा वो, तथा इसे इन परिणामों को पुनः प्राप्त करने में, ये आगे का उन्होंने जो लिखा है ना अंतर्मूर्त काल लगता है, और एक बार उपशम श्रेणी से उतरकर पुनः उपशम श्रेणी पर चढ़ने का काल अंतर्मूर्त है, इसलिए यहाँ गोत्र कर्म के जगन अजगन्य अनुभाग का जगन्य अंतर का जगन्य काल अंतर्मूर्त कहा, ये बात घटित नहीं होती, इसलिए हमने पेज नंबर 310 का रेफरेंस दिया है, क्योंकि वो संकलेश एक समय के अंतर से कर सकता है। अगर इसी को और देखना है तो ये हमने क्षायिक समय में गोत्र का जघन्य है उसका अंतर देख लेते हैं तो कंफर्म होगा ना, यहीं पर लिखना है काल के बाद अंतर की प्ररूपना आने वाली है, वो अंतर में देख लेते क्षायिक समय दृष्टि में। अंतर्मूर चार घाती के लिए,
अच्छा
मैं यह कहना चाहती हूँ, प्रूव करना चाहती हूँ, वो अंतर से नक्की हो जाएगा ना। तो क्षायिक समय दृष्टि में देखो पेज नंबर 55 वेदनी नाम गोत्र कर्म का भंग ओघ के समान बताया, वो तो 11वें में अंतर पड़ता है उसकी अपेक्षा से बताया था उन्होंने। नहीं नहीं वहाँ तो अंतर उसमें होगा ना, जघन्य का ये मैं उत्कृष्ट का देख रही, सॉरी जघन्य का अंतर देखना है, जघन्य बाद में, मैंने उत्कृष्ट का देख लिया, यानी अनुत्कृष्ट का वो देखो देखो इकहत्तर नहीं नहीं 71 पेज पर 71 पर, वो आप जो देख रहे थे वो नाना जीव की अपेक्षा होगा या हम एक जीव की अपेक्षा देख रहे हैं? देखो देखो, चार समय सॉरी क्षायिक समय दृष्टि जीवों में चार घाती कर्मों के जघन्य और अजघन्य अनुभाग बंध का अंतर का लोक संघ के समान है, वो चार घाती का हुआ। जघन्य का तो अंतर नहीं होगा ना, क्योंकि वो अंतिम समय में जघन्य होता है, उसका अंतर काहे से होगा? एक मिनट, जघन्य की बात कहाँ से शुरू हुई है? फिफ्टी फाइव के आसपास कहीं होगी, 57 पर। चार घाती का जघन्य का अंतरकाल नहीं है, और अजघन्य का अंतर कब होगा? अनादि से अजघन्य था, 11वें में अंतर होगा। अब देखो वेदिनीय नाम और गोत्र की पेज नंबर 71। वेदिनीय नाम और गोत्र कर्म के जघन्य अनुभाग बंध का जघन्य अंतर एक समय है, लिखा है ना? जघन्य अंतर हुआ ने उसका अर्थ क्या है? बीच में अजघन्य हुआ, तो जघन्य का जो एक समय अंतर है वो अजघन्य का एक समय का काल हो सकता है। उत्कृष्ट अंतर ओक के समान है। जो उत्कृष्ट अंतर जो हमने देखा था संख्यात लोक प्रमाण वगैरह होगा, नहीं जघन्य का अंतर, अजघन्य का अंतर मूल है। वही उत्सम श्रेणी में होता है ना, ग्यारहवीं गुणस्थान की अपेक्षा ही उसका अंतर पड़ सकता है। अजघन्य भी नहीं बंधे वो कब होगा? या तो जघन्य बनता है तब होगा, या बंध ही नहीं होगा तब होगा। ये कब हो सकता है? ग्यारहवीं में। केवल जघन्य होता है तब अंतर कहेंगे, तो चार समय का हो सकता था, या चार समय से भी अधिक अंतर कब पड़ेगा? ग्यारहवें में पड़ेगा। यानी ये जो एक समय का अंतर बताया उन्होंने, इससे हमारी बात सिद्ध हो जाती है। पेज 71 यानी वेदनीय नाम और गोत्र के लिए जघन्य का जघन्य अंतर एक समय है, ये बात हमारे अजघन्य का एक समय का अंतर प्रूव करती है। अंतर नहीं, काल। समझ में आ रही है कुछ बात? एक समय है ना,
ये लाइन पूरी निकाल देनी है ना
कुछ
कहाँ
पर? हाँ हाँ वो आएंगे वहाँ पर। हम यहाँ रेफरेंस फॉर हम पेज, हाँ हम 43 पेज पर थे। रेफरेंस पेज 71 अंतर के द्वारा भी घटित हो गया। तो यहाँ जो लिखा है ना, पुनः इन परिणामों को प्राप्त करने के लिए अंतर्मूर्त काल लगता है, ये गलत है। यहाँ लिखा ना, इसे इन परिणामों को पुनः प्राप्त करने में अंतर्मूर्त काल लगता है, वो निकाल देना, क्योंकि एक समय के अंतर से वो हो रहा है ना। क्योंकि अभी हमने 71 पेज पर अंतर क्या देखा? क्षायिक समय दृष्टि में गोत्र कर्म के जघन्य का अंतर कितना देखा? एक समय देखा। तो यहाँ अंतर्मूर्त लिखा, ये बात गलत सिद्ध हुई। अथवा उपशम श्रेणी से उत्तर उपशम श्रेणी का काल अंतर्मूर्त है, परंतु वो भी घटित नहीं होता, क्योंकि अजघन्य का जहाँ एक समय घटित किया है वहाँ अंतर्मूर्त क्यों देखे हम? तीनों कैंसिल करना, क्योंकि हमें गोत्र कर्म का अजघन्य का एक समय ही घटित करना है। हाँ लास्ट तक, क्योंकि अजघन्य का एक समय है, इसलिए उसको हमको अंतर्मूर्त प्रूव करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उत्कृष्ट काल तो सादिक 33 सागर में तो सभी विकल्प तो आएंगे। आप कहेंगे वहां श्रेणी में तो अंतर्मूर्त होगा, हाँ, पर जहाँ एक समय एक बाजू लिया 33 अगर एक बाजू लिया तो सारे विकल्प बीच में आ गए। आगे बढ़े, अभी एक शाही समय दृष्टि की बात हो गई। वेदक समय दृष्टि जीवों में, वेदक कहने से चौथे से सातवें तक ही, चार घाती कर्म और गोत्र कर्म के जघन्य अनुभाग बंध का काल शायिक समय दृष्टि जीवों के समान है। वहाँ गोत्र कर्म में अभी एक समय होगा क्योंकि ये मिथ्यात्व के सन्मुख जा सकता है। तो घाती कर्मों का कहाँ होगा वेदक समय दृष्टि में? शपक तो यहाँ नहीं ले सकते, अप्रमत्ता वाला दर्शनमुखी सपना करने वाला ले सकते, करण परिणाम में लेना हमेशा। तो एक समय घटित होगा। देखो चार घाती कर्म का कहाँ होगा? करण परिणाम में एक शायिक समय, हाँ शायिक के सन्मुख में दर्शन मोहनी की, दर्शन मोहनी की सपना कर रहा है उसमें, उसने वो करण परिणाम है उसके, तब सर्व विशुद्धि ज्यादा है। करण परिणाम में ना, एक समय में करण परिणाम, अनिवृत्ति करण का अंतिम, हाँ क्षपणा कर रहा है, बस इतना लिखना। सर्व विशुद्ध एक समय के लिए होगा। अभी देखो विशेषता गोत्र कर्म की बता रहे, इतनी विशेषता है कि गोत्र कर्म के जघन्य अनुभाग बंध का, जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। वहां हमने एक या दो समय देखे, यहाँ एक समय है क्योंकि मिथ्यात्व के सन्मुख वाला लेना, एक समय मिथ्यात्व के सन्मुख। अब अजगन्य अनुभाग बंध का जगन्य काल अंतर्मूर्त, क्योंकि जब जगन्य मिथ्यात्व के सन्मुख है तो बाकी तो उसको अजगन्य ही रहेगा, तो अंतर्मूर्त अभी घटित करो वेदक सम्यक में लक्ष्मी। अंतर्मूर्त के, वे अंतर्मूर्त के लिए वेदक समय दृष्टि रहा, जाने दो, पर उसने संकलेश नहीं किया ऐसा भी ले सकते, या संकलेश अंतिम समय में किया, उसके पूर्व समय में क्या था? अजगन्य था, यानी वो नीचे से किसी गुणस्थान में आया, ऊपर में चौथे में आया, तो चौथे में आया और फिर मिथ्यात्व के सन्मुख मान लेते उसने जगन्य किया, उसके पहले क्या था? अजगन्य। या कोई समय में पांचवें गुणस्थान में ही रहा, मिनिमम कितने काल तक रह सकता है अंतर्मूल, तो उसका क्या था? अजगन्य ही था, तो ये अंतर्मूल घटित होगा। हाँ वेदक का मिनिमम काल लेना और अजगन्य का उत्कृष्ट काल के लिए वेदक का मैक्सिमम काल लेना। सागर यहाँ लिखा ना, अजगन्य अनुभाग बंध का जघन्य काल अंतर्मूल, उत्कृष्ट काल 66 सागर है। ये पूरा 66 सागर कृतकृत्य वेदक सहित हो सकता है, वहां उसको ले लेना। यानी वेदक सम्यक्तो का पूरा काल, वेदनीय और नाम कर्म के जघन्य अनुभाग बंध का काल ओघ के समान है, यानी मध्यम परिणाम में होता है, एक से चार समय होते हैं। जघन्य अनुभाग बंध का जघन्य काल एक समय, क्योंकि दो जघन्य के बीच में होगा। उत्कृष्ट काल 66 सागर है, जो वेदक सम्यक्त्व का काल है, तो उसने जघन्य किया ही नहीं, अन्य परिणाम किए, मध्यम परिणाम वाला वो किया ही नहीं, तो 66 सागर हो गया। विशेषार्थ वेदक सम्यक्त्व में गोत्र कर्म का जघन्य अनुभाग बंध, मिथ्यात्व के अभिमुख हुए जीव के जघन्य अनुभाग बंध के समय होता है, अंतिम समय लेना उसका। इसलिए इसके जघन्य अनुभाग बंध का जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय कहा है शेष कथन सुगम में। हमने बहुत सारे उसमें चेंजेस किए हैं, पहला तो ऊपर के लाइन में लिखा ही था हमने, और विशेषार्थ में देखो, एक तो सेकंड लाइन में लास्ट में चारों गति के समय दृष्टि लिखा है ना, वहाँ चारों गति के अविरत सम्यक दृष्टि लिखना है। शायिक तीन गति में तो चौथे वाला ही होता है, मनुष्य ही ऊपर के गुणस्थान वाले होते हैं, परंतु सर्व संकल्प उसको चौथे में होगा, उत्कृष्ट संकल्प परिणामों से बनता है। उसके बाद है तथा इसे इन परिणामों को वहां से लेकर अंत तक पूरा काट देना। तथा इसे इन परिणामों, तीसरी लाइन विशेषार्थ की, पुनः प्राप्त करने में अंतर्मूत लगता है, परंतु अभी हमने 71 पेज पर अंतर की प्ररूपणा देखी शायिक सम्यक्तों में। देख लो मैंने दो जघन्य द्वारा कितने अंतर से प्राप्त कर सकता है, तो एक समय से कर सकता है। 71 पेज पर शायिक सम्यक्त की मार्गना में, हाँ देखो ना, गोत्र का है ना, वेदनी नाम गोत्र तीनों को लिया, तो जघन्य अनुभाग बंध का जघन्य अंतर देखना है। एक समय है तो जघन्य अंतर में क्या किया उसने, अजघन्य का बंध किया, यानी ये क्या सिद्ध हुआ, अजघन्य का जघन्य काल एक समय है, अंतर्मूर्त नहीं है। हमें ये तीनों लाइन काट देना है और वहाँ रेफरेंस पेज 71 लिखना है। हाँ आगे के दो लाइन, शेष कथन सुगम है, रखो नहीं रखो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। मैंने तीन लाइन पूरी काट दो और रेफरेंस लिखो पेज 71। हाँ वहां तक जघन्य काल अंतर्मूर्त कहाँ है, अंतर प्ररूपणा की भी सिद्ध हुआ और हमने क्षायिक सम्यक्तों में उत्तर प्रकृतियों की बात देखी, वहां पर भी सिद्ध हुआ। तो जो करेक्शन हमने किया वो बराबर हुआ। 71 ऊपर तो लिखा था ना हमने, प्राकृत में कर लिखा था वो, आपने लिखा नहीं पहली लाइन प्राकृत की, हाँ जो हमने हिंदी में जो पहली लाइन में डाला था ना उसका प्राकृत वहाँ लिखना है। तो बेसमयम के बाद वाक्य शुरू होता है, वहाँ क्या लिखा है अज, तो अज के पहले लिखना है घादी 4-गोद। देखो जैसे यहाँ की लास्ट लाइन देखो, 42 की लास्ट लाइन प्राकृत की, वहाँ क्या लिखा है खईगे घादी 4 और गोद, वैसे यहाँ लिखना है घादी 4-गोद, वैसा ही लिखना है। गोद गोद डैश गोद बस इतना ही लिखना। अब मैं वहां का पढ़ती हूँ, अज जह अंतो, अंतो के बाद ऊपर एक शब्द डालना एग, एग बस, और उक्क 33 सागरम दोनों के लिए है, और ये क्रम से लिखा हमने, यानी अंतर्मूर्त और एक समय क्रम से लिखा हमने, पर प्राकृत में क्रम से शब्द नहीं डाला, हिंदी में डाला उन्होंने, ये हो गया। हाँ वेदक सम्यक्त की मार्गणा अभी हमारी हो गई, अब हम उपशम सम्यक्त की बात पढ़ने जा रहे हैं। उपशम सम्यक दृष्टि जीवों में 4 घाती कर्म और गोत्र कर्म के जघन्य अनुभाग बंध का जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। तो मयंक भाई 4 घाती का जघन्य कब होगा, 10वें के अंत में उपशम श्रेणी चढ़ने वाला लेना, द्वितीय उपशम वाला लेना, और गोत्र कर्म का जघन्य मिथ्या तो किसन मुख, तो एक समय घटित हो रहा है। और जघन्य अनुभाग बंध का जघन्य और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है, क्योंकि उपशम सम्यक्तों का काल लेना है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ एक समय घटित नहीं होगा। आप कहेंगे श्रेणी में उतरते समय बंद किया और एक समय में मरा, मरा तो भी द्वितीय ऑप्शन चालू रहा, देव में जाएगा तो भी बंद तो होगा, तो द्वितीय ऑप्शन हो या प्रथम ऑप्शन है, अंतर्मूर्त तो काल है ही है, इसलिए जघन्य भी कहो उत्कृष्ट भी कहो अंतर्मूर्त होगा। एक ख्याल में है ना, वो स्वामी को हम ख्याल में लेते हैं तो ये पता चलता है। अब वेदनी और नाम कर्म के जघन्य अनुभाग बंध का काल ओघ के समान है, इन्हें एक समय से चार समय। अजघन्य अनुभाग बंध का जघन्य काल एक समय है, यानी दो जघन्य के बीच में। उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है क्योंकि उषम सम्यक्त का काल अंतर्मूर्त है। ये हो गया दोनों का, वेदनी का भी हो गया। गोत्र तो घाती कर्म के साथ बताए थे, आयु तो यहाँ बनती नहीं है। इसी प्रकार सम्यक मिथ्या दृष्टि जीवों के जानना चाहिए क्योंकि इसका भी काल अंतर्मूर्त है, यहाँ भी आयु का बंध नहीं है, यहाँ भी चार घाती कर्मों का तो सम्यक तो के सन्मुख होगा, गोत्र का तो मिथ्या तो के सन्मुख होगा, वहाँ पर भी एक एक समय ही ले लिया है, अंतिम समय में लेना नहीं इसको। अब सासाधन सम्यक दृष्टि जीवों में क्या हुआ, समय मिथ्या दृष्टि क्यों हो गए? सासाधन समय दृष्टि जीवों में चार घाती कर्म और गोत्र कर्म के जघन्य अनुभाग बंध का जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है। गोत्र कर्म का तो मेरे ख्याल से नारकी को लेना पड़ेगा, नहीं क्योंकि जघन्य करना है ना तो निज गोत्र का बंध होगा, सासाधन में निज गोत्र भी बंधता है ना, तो नारकी तो नियम से निज गोत्र बांधेगा। सर्व विशुद्ध अवस्था में भी, यानी अभी भी समय को से गिर कर आया है तो निज गोत्र का जघन्य बांधेगा वो, बाकी जीव तो उच्च गोत्र बांधेंगे ना। हम थोड़ा उसको में देख लेते हैं, स्वामित्व देखेंगे। क्योंकि यहाँ पर उसको एक या दो समय लिया ना तो सर्व विशुद्ध लेना है उसका, यानी वहां तो कुछ करण नहीं है कुछ नहीं है ना, स्वामित्व देख लो। सर्व विशुद्ध दूसरे गुणस्थान वाला लिया, पेज नंबर 25। गोत्रकर का तो सातवी पृथ्वी का नारकी लेना है, परंतु वो एक या दो समय तो हो ही जाता है। इसलिए घाती कर्म और गोत्र कर्म का एक या दो समय लिया, घाती कर्म तो विशुद्धि वाले, गोत्र कर्म को भी विशुद्धि वाले इसलिए लेना कि सातवें नरक वाला विशुद्धि वाला लेना, क्योंकि नियम से नीच गोत्र का ही बंद करेगा। सातवें नरक वाला सर्व विशुद्ध नहीं, वो कितना भी विशुद्ध हो नीच गोत्र ही बांधेगा दूसरे गुणस्थान में। सासाधन वाला सर्व विशुद्ध,
तो कितना विशुद्ध हो मगर वो सम्यक प्राप्त कर लेगा तो उच्च गोत्र बांध सकता है।
सर्वत्र से गिर कर आया है सासाधन में,
नहीं नहीं ऐसा नहीं, अदरवाइज तो उच्च गोत्र का तो बंद कर सकते हैं ना।
सातवें नरक में समय दृष्टि करेगा,
हाँ समय दृष्टि,
पर वो उसकी विशेषता क्या है, वो पहले दोनों गुणस्थान में निज गोत्र ही बांध रहे हैं, अन्य जो क्या है अभी भी जो सम्यक से नीचे गए हैं वो क्या बांधेंगे, उच्च गोत्र बांधेंगे शुरुआत में, पर ये तो नीच गोत्र ही बांधेगा, ये इसकी विशेषता है। परंतु उसमें समय एक या दो समय, क्योंकि गिरकर अभी अभी आया है, पर उसके एक समय नहीं लेना, एक या दो समय। और जघन्य अनुभाग बंद का जघन्य काल एक समय, यानी ऐसा एक समय के लिए जघन्य करने के बाद भी अजघन्य करके फिर सासाधन से मिथ्यात्व में गया, ऐसा भी ले सकते, दो जघन्य के बीच में भी ले सकते। और उत्कृष्ट काल छह आवली है, वो सासाधन का काल। आपको लिखना है कुछ? हाँ, हो गया ना। हाँ, अभी मैंने वो उत्कृष्ट काल छह आवली देखा, पढ़ा, वो वेदनी और नाम कर्म के। जघन्य अनुभाग बंद का काल ओक के समान है, यानी एक से चार समय। और जघन्य अनुभाग बंद का काल ज्ञानावरण के समान है, क्योंकि सासाधन का काल ही एक समय से छह आवली है, वही लेना है यहाँ पर। अब आहारक जीवों में सात कर्मों के जघन्य अनुभाग बंद का काल ओक के समान है, क्योंकि घाती कर्मों का तक शपक में होगा और वेदनीय नाम का तो मध्यम परिणाम में होता है, गोत्र का जघन्य तो सातवें नरक में होता है। इस तरह से स्वामित्व देखा हमने, और उसका काल चार घाती और गोत्र के लिए एक समय का होगा। वेदनीय नाम का तो ऊपर बता दिए, वेदनीय नाम का एक से चार समय। और अजगन्य के लिए आहारक पने बनने की वो पूरी बात लेनी पड़ी। अजगन्य अनुभाग बंद का जघन्य काल एक समय है, और उत्कृष्ट काल अंगुल के असंख्यातवे भाग प्रमाण है। आहारक बना रहा। अंगुल का असंख्यात्व भाग, और उसको ये तो क्षेत्र की अपेक्षा काल बताया, और समयों में उसको गिनना है, तो असंख्याता संख्यात उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी जितना काल है उतना। क्या कहा? अंगुल का असंख्यात्व भाग ये तो प्रमाण है। जैसे पल्ले तो समझते हम, पल्ले में डायरेक्ट काल बताया जाता है, परंतु क्षेत्र में वो जो अंगुल का असंख्यात भाग वाला जो असंख्यात का प्रमाण है, उतने समय है, तो उतने समयों में कितना काल बीतता है, असंख्याता संख्यात उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी। असंख्याता संख्यात, हाँ वही, यानी एक तो परिता संख्यात होता है, किता संख्यात होता है, असंख्याता संख्यात होता है। वो असंख्याता संख्यात का कोई मध्यम भेद ले लेना। तो इतने कल्प काल है, बीस कोड़ा कोड़ी सागर, इतने लेना असंख्याता संख्यात बार, तो उसके कितने समय हो गए। तो अजगन्य अनुभाग का जघन्य काल एक समय मुझे बताओ लक्ष्मी जी। उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी, हाँ वो उसका प्रमाण मैंने, उत्सर्पिणी अवसर्पिणी का अर्थ है बीस कोड़ा कोड़ी सागर। ये काल के समय ऐसा लिखने की जरूरत नहीं, ये काल कितना बड़ा है, तो असंख्याता संख्यात उत्सर्पिणी अवसर्पिणी के बराबर है, बराबर।
तो दो जगन्नी के बीच में भी अजगन्ना कर सकता है एक बार, एक समय के लिए।
अब तो दो के बीच बताओ, शपक में जो जगन्य होता है उसका बताओ। वेदिनी का जघन्य एक समय होता है, अजघन्य एक समय के लिए होता है। अब गोत्र का अजघन्य कब होगा? वो सातवें नरक का नरक छोड़कर बाकी अजघन्य होगा। और चार घाती कर्मों का अजघन्य कब होगा? क्योंकि अंत में वो जघन्य है, पूरा अनादि से तो अजघन्य था, तो एक समय कैसे हुआ? तो क्या हुआ? अजगन्य किया, फिर क्या हुआ? देखो देखो, श्रेणी उत्तरा, एक समय के बंद किया तो अजगन्य था, और मरकर विग्रह गति से मोड़ वाली गति से गया तो अनाहरक हो गया। यानी उपशम श्रेणी से उत्तरा, उतर कर एक समय में मरकर अनाहारक हुआ। हमारी मार्गना आहार रखी है ना, अनाहारक हुआ का अर्थ क्या है? मरकर विग्रह गति से देव में गया। कहते इस प्रकार काल समाप्त हुआ। पहले हमने उत्कृष्ट का और अनुत्कृष्ट का देखा, अब जघन्य अजघन्य का देख लिया, उसके बाद अंतर को देखना है।
अंतर आसान है, एक बार समझ जाएगा तो पता
कर सकते। उत्कृष्ट से जघन्य पर आते, अभी जघन्य का देख रहे हैं, अभी उत्कृष्ट को सोचना है, थोड़ा सोचना पड़ेगा। स्वामी तो याद करना है। अच्छा, अभी उत्कृष्ट की बात करें, चार घाती का उत्कृष्ट कहाँ होगा? जिसका दृष्टि संगी पंचनी संकलेश वाला, वो उत्कृष्ट करता है। उसका काल कितना देखा था? एक या दो समय देखा था, तो दो के बीच में एक समय के लिए वो अनुत्कृष्ट कर सकता है। तो हमको उत्कृष्ट का अंतर एक समय का हो सकता है। तो जिसने उत्कृष्ट नहीं किया तो अनुत्कृष्ट लगातार कितने समय तक करता है मालूम है?
करता
तो अनंत काल होगा। एक इंद्रिय में चला गया। अभी हम यहाँ से पढ़ेंगे। देखो, अंतर प्ररूपना शुरू होती है, हमारा अनुयोग नंबर 14 है। एक जीव की अपेक्षा अंतर, यानी किसी जीव ने उत्कृष्ट अनुभाग बंद किया और कितने समय के बाद वो लौटकर फिर दोबारा कर सकता है, मिनिमम भी और मैक्सिमम भी। लौट तो वो करना है। हाँ, तो अंतर घटित होगा। अंतर में दो बार वो पर्टिकुलर बंद कराना है। अब हम पहले देखते हैं, यहाँ पर अंतर दो प्रकार का है, जघन्य और उत्कृष्ट। उत्कृष्ट का प्रकरण है, उसकी अपेक्षा यानी उत्कृष्ट की अपेक्षा निर्देश दो प्रकार का है। निर्देश का अर्थ क्या है? कथन, ओग और आदेश। ओग ने इन जनरल बात करेंगे, आदेश ने मार्गनाओं में बताएंगे। ओग से चार घाती कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का कितना अंतर है? कितने जघन्य अंतर एक समय है, क्योंकि हमने देखा था उसका काल एक या दो समय तक होता है सर्व संकलेश में, तो उसके बीच में एक समय के लिए अनुत्कृष्ट हो सकता है। तो जघन्य का अंतर एक समय, सॉरी उत्कृष्ट अनुभाग का जघन्य अंतर एक समय है। उत्कृष्ट अंतर अनंत काल है, जो असंख्यात पुद्गल परिवर्तन प्रमाण है। यानी उत्कृष्ट करने वाला संगी पंचेंद्रिय मिथ्या दृष्टि वगैरह वगैरह सब पूरे, हाँ, साकार जागरूक, अब वो एकेंद्रिय में चला गया। इतने काल के बाद पंचेंद्रिय होगा तो भी उत्कृष्ट करेगा। इतनी सब ख्याल में रखकर तो कहते अनंत काल है, जो असंख्यात पुद्गल परिवर्तन प्रमाण है। अब अनुत्कृष्ट का अंतर देखना है। अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध का जघन्य अंतर एक समय है। जब वो उत्कृष्ट कर रहा है तो एक समय के लिए उसका अंतर पड़े, और उत्कृष्ट अंतर अंतर्मूर्त है। देखो, जो उत्कृष्ट नहीं कर रहा है तो लगातार तो अनुत्कृष्ट कर ही रहा था अनादि से, तो कहते कि वो लगातार अनुत्कृष्ट करता ही रहेगा, उत्कृष्ट किया ही नहीं, तो उसका अंतर कब पड़ेगा? उत्कृष्ट अधिक से अधिक दो समय तक कर सकता है, तो अनुत्कृष्ट का और अधिक अंतर कब होगा? तो 11वें गुणस्थान अंतर्मूर्त, बंद ही नहीं हुआ। ख्याल में आई ना बात? तो 11वें गुणस्थान की अपेक्षा अंतर्मूर्त का अंतर पड़ता है। वेदनीय नाम और गोत्र कर्म के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का अंतरकाल नहीं है। अब ये हमको उत्कृष्ट सोचना है, जगन्य नहीं, इनका उत्कृष्ट कहाँ? शपक में। हाँ, शपक में अंत में, अंतिम समय में उत्कृष्ट हुआ, तो उत्कृष्ट का कभी अंतर होने का सवाल नहीं। दोबारा उत्कृष्ट कब होगा?
शपक का अंतिम समय जगन्य होता है ना,
घाती का जगन्य होता है, ये इसकी प्रशस्त प्रकृति बन गई। मूल प्रकृति हमको सोचना है कि गोत्र नीच बन रहा है, उच्च गोत्र बन रहा है, कौन सा वेदनीय बन रहा है। तो वहाँ तो साता वेदनीय, वेदनीय में से साता वेदनीय, और उत्कृष्ट में वो प्रशस्त प्रकृति का ही उत्कृष्ट होगा और प्रशस्त का उत्कृष्ट नहीं होगा। तो शपक के अंतिम समय में वेदनीय नाम और गोत्र का उत्कृष्ट बंधेगा, तो उसका अंतर कब होगा?
नहीं लिखा है ना,
यहाँ नहीं लिखा है, पर हमको नहीं समझ में आ रहा है। अंतिम समय में जहाँ उत्कृष्ट किया, अब बंदे की उच्चित्ति हुई, अब फिर दोबारा उत्कृष्ट कैसे करेगा? नहीं समझे?
नहीं होगा ही नहीं।
अरे बंदे से अब बार बार करके हम अरिहंत हो जाएंगे, वो बंदे काहे क्यों करेंगे? जहाँ अंतिम समय में उत्कृष्ट है ना, उसकी बात। जब हम जघन्य का प्रकरण गए, चार घाती कर्मों का जघन्य का अपेक्षा पक्के, वो जघन्य का अंतर होगा कभी नहीं होगा। ऐसे यहाँ वेदिनी नाम गोत्र के उत्कृष्ट का अंतर नहीं होगा। यह क्या लिखा देखो, वेदिनी नाम और गोत्र कर्म के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का अंतरकाल नहीं है, क्योंकि क्षपक सूक्ष्म सांप्राय के उत्कृष्ट है। हम उसका स्वामित्व ख्याल रखेंगे ना, तो ये समझ में आता है। क्षपक सूक्ष्म सांप्राय अंतिम समय में उत्कृष्ट हुआ एक ही समय के लिए, फिर दोबारा उत्कृष्ट करने का कोई सवाल नहीं है। अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध का जघन्य अंतर एक समय और उत्कृष्ट अंतर अंतर्मुख। अब देखो, अनुत्कृष्ट अनुभाग का जघन्य अंतर कैसे होगा? आप कहेंगे उत्कृष्ट किया बीच में और फिर दोबारा अनुत्कृष्ट नहीं हो सकता, तो अनुत्कृष्ट का अंतर कब होगा? अनादि से अनुत्कृष्ट कर रहा था, तो 11वें में एक समय के लिए बंद ही नहीं किया और मर गया, तो देव में जाके बंद शुरू किया, वो एक समय का अंतर हुआ। या 11वें में पूरा अंतर्मूर्त रहा, बंद ही नहीं किया, फिर बंद शुरू किया, वही अनुत्कृष्ट ही था, तो अनुत्कृष्ट का अंतर एक समय से अंतर्मूर्त हुआ। ग्यारहवें गुणस्थान का पूरा अंतर्मूर्त काल, अंतर्मूर्त है, क्योंकि मरण हो सकता है ना कभी भी। ग्यारहवें गुणस्थान में एक समय में भी मरण हो सकता है। देखो, जब हम ज्ञानावरण आदि में जघन्य अंतर देखा था, तो दो जघन्य के बीच में भी, सॉरी, दो उत्कृष्ट के बीच भी अनुत्कृष्ट हुआ था, और यहाँ वेदिनी नाम गोत्र में उत्कृष्ट तो अंतिम समय में होता है, तो बाकी तो अनुत्कृष्ट ही था, तो उसका बंध ही नहीं, वो कब होगा? तो 11वें में। अब आयु कर्म की बात करते हैं। आयु कर्म के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का जघन्य अंतर एक समय है, वो हमने देखा था ना कि उसका उत्कृष्ट कौन करता है? देवायु बांधने वाला अप्रमत्त, तो कभी भी कर सकता है बीच में, एक समय रुक कर फिर दोबारा भी उत्कृष्ट कर सकता है, तो उत्कृष्ट अनुभाग बंध का जघन्य अंतर एक समय है, और उत्कृष्ट अंतर अर्धपुद्गल परिवर्तन प्रमाण है। देखो क्या कहा, अर्धपुद्गल परिवर्तन में कुछ कम ले लेना अभी, ये कैसे लेंगे? स्थिति की अपेक्षा विचार करेंगे तो आपको सूझेगा। 33 सागर के बांधने वाला उत्कृष्ट अनुभाग बंद करता है, अंतर्मूर्त में कभी भी कर सकता है, यानी ऐसे नहीं पहले समय में अंत समय ऐसा कुछ नहीं, तो उसने एक बार उत्कृष्ट किया, एक समय रुक कर फिर उत्कृष्ट किया, ये हो सकता है। अब कहते हैं उत्कृष्ट का उत्कृष्ट अंतर चाहिए।
एक बार
किया, अरे 33 सागर की आयु बांधने वाला, वही घाता इश्क कराना, उसको घाता इश्क किया हो, घाता इश्क किया, फिर उसने स्थिति में कैसे देखा था? वो 10,000 वर्ष की आयु थी, तो स्थिति के लिए जघन्य अंतर के लिए फिर दोबारा 33 सागर की आयु बांधी थी उसने, पूर्व कोटि में एक पूर्व कोटि की आयु 10,000 वर्ष की, फिर दोबारा उसने उत्कृष्ट स्थिति बांधी, ऐसा था वहां पर। यह हमको कैसे लेना है? घाता इश्क होकर भले वो नीचे की कौन सी भी आयु थी उसने, अर्धपुद्गल परावर्तन काल तक हो, मिथ्या तो में घूमा,
एक बार उसने उत्कृष्ट 33 सागर की बांधी
और घाता इश्क के साथ अनुभाग भी घटाया
वही टाइम पे,
हाँ उसी भाव में,
उसी भाव
तैतीस सागर में गया ही नहीं, वो
गया ही नहीं,
बांधी आयु, आयु बांधी तैतीस सागर की, पर अभी उसके मान लेते ना बंथन पूर्व कोटी बाकी है उसका, उसमें ऐसे कोई संकलेश हुआ कि उसने घात करके अभी देवायु तो बदलेंगे नहीं, तो मिनिमम 10,000 की भी कर सकता है। हाँ, देसी सागर वाला 10,000 की भी कर सकता है, हमने स्थिति बंध में देखा था। ना ना ना, घात आयुष का कहाँ तक करते, घात होकर कहाँ तक की आयु रह सकती है,
वो
कर सकते हैं। पर जैसे देखो इसका अर्थ क्या है, घात आयुष का साधिक 18 सागर तक ही कर सकते मैक्सिमम, मैक्सिमम, पर मिनिमम कितना 10,000 वर्ष तक आ सकता है नीचे, यानी कोई ग्रेवेक वाला घात आयुष वाला नहीं होगा ये कहना चाहते। साधिक 18 सागर कहाँ की आयु है, सहस्रार तक, यानी सहस्रार तक के जो घात आयुष वाले हो सकते
हैं।
आप नहीं समझे, साधिक 18 सागर वाले का घात करता है ऐसा उसका अर्थ नहीं है, घात होकर साधिक 18 सागर रह सकती है मैक्सिमम, यानी 33 सागर वाले ने कितनी की मैक्सिमम, उसके कम घात किया, कम घात किया तो कितना रहा साधिक 18 सागर, ग्रेवे की आयु वाले ने घात किया तो साधिक 18 सागर है, पर ऊपर के कोई भी जो घात करके कितना हो सकते है 10,000 वर्ष के हो सकते। हम द्विपायन मुनि का हमेशा उदाहरण देते हैं ना, हाँ अग्नि कुमार में गए, वो 33 सागर के आता है ऐसा, 33 सागर की बांध कर वो अग्नि कुमार में चले गए।
तो प्रेयक वाले घात आयुष करके 18 सागर की कर सकते,
कर सकते हैं 10,000 वर्ष की भी कर सकते हैं,
10,000
वर्ष से लेकर साधिक 18 सागर तक कुछ भी विकल्प हो सकते हैं। ऊपर के देव नहीं करते उसका अर्थ नहीं है, घात करके शेष आयु कितनी रह सकती है, साधिक 18 सागर तक के ही जीव घातायुष्क वाले हैं। ऊपर के कोई घात इन्हें ऐसा नहीं है कि 33 सागर वाला ने ग्रेवे की आयु रखी, ऐसा नहीं होता है, ख्याल में है नहीं ये बात। देखो हमने स्थिति बंध के बारे में देखा था, मैं यहाँ लिखा भी है, मैं पढ़ के आपको बताती हूँ। अच्छा, वो स्थिति बंध की बात है, अनुभव की नहीं है, यानी आयु के उत्कृष्ट स्थिति बंध का जघन्य अंतर, यहाँ उत्कृष्ट अनुभाग का देख रहे हैं तो जघन्य अंतर एक समय होता है, तो आयु के उत्कृष्ट स्थिति बंध का जघन्य अंतर, अब ब्रैकेट में लिखना एक पूर्व कोटि माइनस एक समय प्लस 10,000 वर्ष, दस हजार वर्ष
एक साथ,
हाँ वो ब्रैकेट के बाद प्लस 10,000 वर्ष, क्योंकि वो माइनस एक समय बीच में लिखा है ना, इसलिए 10,000 वर्ष। अब ये कैसे घटित करेंगे, यानी किसी ने, क्योंकि उत्कृष्ट स्थिति में हम आबादा सहित लेते हैं, होता है ना, क्योंकि एक देव की आयु लेना, एक मनुष्य की आयु लेना है। देखो देखो, उत्कृष्ट उसने कब बांधी, तो पूर्व कोटि वाला मनुष्य था, वन थर्ड पूर्व कोटि बाकी थी, तब जिसने 33 सागर की आयु बांधी उसको उत्कृष्ट कहते हैं। अनुभाग में ऐसा कब कब बांधता है कि आबादा से कोई लेना देना नहीं, ये कभी भी उत्कृष्ट कर सकता है, ये नहीं लागू होता, हम स्थिति की अपेक्षा सोच रहे कंपेरिजन में। तो 33 सागर आयु बांध के उसने घात आयुष्क की तो 10,000 वर्ष की रही, मरेगा कब, अभी बंथर पूर्व कोटि के बाद ही मरेगा, तो यहाँ का पहले समय में उसने आयु बांधी उत्कृष्ट, वो समय माइनस कर देना। अब रिमेनिंग वन थर्ड पूर्व कोटि भोगी, फिर मरा, और कहाँ उत्पन्न हुआ, 10,000 वर्ष के देव में। अब वो देव फिर मनुष्य हुआ पूर्व कोटि का, और उसने भी वन थर्ड पूर्व कोटि आयु रही, तब उसने फिर देवायु बांधी 33 सागर के, यानी वो वन थर्ड पूर्व कोटि और ये टू थर्ड पूर्व कोटि, और बांधने का एक समय माइनस करना, तो एक पूर्व कोटि माइनस एक समय हुआ, और ये 10,000 वर्ष देवायु उसने भोगी वो हुआ, फिर उसने 33 सागर वाली आयु बांधी थी। तो उत्कृष्ट स्थितिबंध का जघन्य अंतर ये पूर्व कोटि माइनस एक समय प्लस 10,000 वर्ष, यहाँ तक समझ में ही ना। ये मिनिमम की बात है, अब यहाँ मैक्सिमम अंतर कितना है? अर्धपुद्गल, क्योंकि 10,000 वर्ष बाद में वो मिथ्यात्व में गया, क्या क्या सब, यहाँ तो मिथ्यात्व में जाकर वो 10,000 वर्ष का हुआ है, मिथ्या दृष्टि जाएगा ना, भवनत्री की आयु शेष कौन रहेगा, यानी 33 सागर की आयु बांधने वाला जीव भी, मुनिराज भी मिथ्यात्व में गए है, आयु का इतना उसने घात किया है, और फिर अर्धपुद्गल परावर्तन तक, क्योंकि 33 सागर की आयु बांधते तो नेक्स्ट भाव में आके मोह जाते
हैं।
इन्हें कैसे परिणामों की विचित्रता, कैसे मुनिराज और वहाँ के आयु बांधने वाले और कहाँ भटक रहे था। तो उत्कृष्ट अंतर अर्धपुद्गल पर, अभी अर्धपुद्गल में से वो 33 सागर माइनस करना पड़ेगा मनुष्य, क्योंकि वो मोक्ष जाने का काल जो है उसको छोड़कर, क्योंकि वो अभी फिर घातक इसको वाला नहीं करना है, उसको 33 सागर की आयु बांधी है उसने। देखो यहाँ आयु की बात हमने पढ़ी ना, कहाँ गया, हाँ आयु कर्म के फिर पढ़ती हूँ। उत्कृष्ट अनुभाग बंध का जघन्य अंतर एक समय, उत्कृष्ट अंतर अर्धपुद्गल परिवर्तन प्रमाण है, अर्धपुद्गल में कुछ कम तो समाज लेना। अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध का जघन्य अंतर एक समय, वो एक समय का अंतर है वो, तो बीच में दो उत्कृष्ट के बीच में, स्थिति जैसा नहीं है, स्थिति में पहले समय में उत्कृष्ट कहेंगे, बाद में एक एक समय घटता चला जाएगा, यहाँ तो कहीं पर भी उसका
समय दो
ना, ना, ना,
कैसे लेना है?
अनुभाग को लेना है, स्थिति को नहीं,
अनुभाग को लेना।
देखो अंतर्मूर्त आयु बनती है उसी में, बीच में कहीं पर भी उसका उत्कृष्ट अनुभाग होता है, मान लेते 33 सागर की देवायु लगातार बांध रहा है वो अंतर्मूर्त, स्थिति में हम एक एक समय घटता क्यों लेते, क्योंकि आबादा कम हो रही है, पर उसी में अंतर्मूर्त जो 33 सागर की आयु बांध रहे, कभी भी उसका अनुभाग थोड़ा ऊपर अप एंड डाउन हो सकता है,
वो पर्टिकुलर आयु
ना, तो मैक्सिमम अनुभाग जो है बांधा एक समय के लिए, मैक्सिमम नहीं बांधा, अनुत्कृष्ट बांधा, फिर उत्कृष्ट बांधा, तो उत्कृष्ट का तो एक समय दिया ही दिया, अनुत्कृष्ट का भी एक समय हुआ, क्योंकि अनुत्कृष्ट करना था, एक समय के लिए ही उत्कृष्ट बांधी, फिर अनुत्कृष्ट बांधी, इन दो उत्कृष्ट अंतर है ना, अनुत्कृष्ट का अंतर, यानी बीच में उसने उत्कृष्ट किया एक समय के लिए, दो उत्कृष्ट के बीच तो अनुत्कृष्ट का काल कहेंगे, पर यहाँ हमको अनुत्कृष्ट का अंतर कहना था, एक समय के लिए अनुत्कृष्ट किया, सॉरी अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध का जघन्य अंतर एक समय है, यानी एक समय के लिए उत्कृष्ट किया, और उत्कृष्ट अंतर साधिक 33 सागर है। अभी साधिक 33 सागर में कैसे लेना है?
साधिक 33 सागर ना, तो वन पर पूर्व कोटि पहले आयु बांधी उसका ले लेना, फिर 33 सागर की आयु,
उसे यहाँ तो आयु इन जनरल है, देवायु के लिए नहीं कह रहा, इसने देवायु बांधी एक समय, कभी उत्कृष्ट किया है नहीं किया, तो अनुत्कृष्ट बांधी मान लेते, 33 सागर में अनुत्कृष्ट का आयु बांधा, कब बांधी? वो तो बंथर पूर्व कोटि बाकी थी तभी, ये बंथर पूर्व कोटि के बाद देव में गया, देव में 33 सागर तक रहा, और अंत में अंतर्मूर्त बाकी रहा, तब उसने मनुष्य आयु बांधी, मनुष्य आयु तो अनुत्कृष्ट थी, अनुत्कृष्ट का अंतर कितना हुआ? 33 सागर प्लस बंथर पूर्व कोटि, ये विशेषांक कल देखना पड़ेगा, अभी 10 बज गए ना, तो कल रिपीट भी हो जाएगा हमारा अंतर का। हाँ चावानी के ध्यान से सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तकनम सदा देत हो रो।